एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम अमेरिकी साहित्य के एक बहुत ही अहम लेखक के संसार में उतर रहे हैं। एक ऐसे लेखक जिन्होंने अमेरिकी मानस की अंधेरी गलियों, अपराध बोध की छायाओं और इतिहास की गूंजती आवाजों को मतलब अपनी कहानियों में उतारा। नाम है नथेनियल हॉथॉर्न। 4 जुलाई 1804 को जन्मे थे, ठीक अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर। ये भी देखिए क्या दिलचस्प संयोग है। और उनका देहावसान 1864 में हुआ।
बिल्कुल। और हॉथॉर्न को समझने के लिए ना उनका शहर सेलेम मैसाचुसेट्स बहुत जरूरी है। उनके एक पूर्वज थे जज जॉन हॉथॉर्न। वो 17वीं सदी के जो बदनाम सेलेम विच ट्रायल्स हुए थे उसमें शामिल थे।
ओहो, हाँ।
हाँ। और कहते हैं कि इसी वंशावली के बोझ से शायद कुछ दूरी बनाने के लिए ना नथेनियल ने अपने उपनाम हॉथॉर्न में एक W जोड़ा और हॉथॉर्न लिखने लगे।
अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है,
है ना?
और अक्सर उन्हें डार्क रोमांटिसिज्म का मतलब प्रमुख चेहरा माना जाता है। ये वो साहित्यिक धारा थी जो मानती थी कि इंसान के मन में सिर्फ अच्छाई या आशा ही नहीं है, बल्कि गहरा अंधेरा, तर्कहीनता और हाँ, पाप की प्रवृत्ति भी उतनी ही सच है।
और ये वो समय था जब अमेरिका खुद एक बड़े मतलब जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजार रहा था। सोचिए, राष्ट्रपति जेफरसन से लेकर लिंकन तक का समय, लुइजियाना परचेज हुआ, जमीन जुड़ी, औद्योगिक क्रांति आ रही थी और फिर गृह युद्ध की आहट। हॉथॉर्न ने ये सब देखा।
बिल्कुल, वो इन सब तूफानों के साक्षी रहे।
तो आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके जरिए हम कोशिश करेंगे हॉथॉर्न की दुनिया, उनके गहरे विचारों और अमेरिकी साहित्य पर उनकी जो छाप है उसको समझने की। तो चलिए उस माहौल से शुरू करते हैं जिसमें हॉथॉर्न लिख पढ़ रहे थे, रच बस रहे थे। ये दौर था अमेरिकन रेनेसां का, है ना? मोटे तौर पर 1830 से 1860 के बीच का समय।
हाँ बिल्कुल, ये वो समय था जब अमेरिकी लेखक यूरोप की छाया से निकलकर अपनी एक खास पहचान, अपनी आवाज बना रहे थे।
और इसी दौर में देखिए ट्रांसेंडेंटलिज्म का भी काफी बोलबाला था। एमर्सन, थोरो जैसे विचारक थे जो मनुष्य की आंतरिक अच्छाई, प्रकृति से जुड़ाव, व्यक्ति की सहज बुद्धि, इन सब पर बहुत जोर दे रहे थे।
हाँ हाँ, सुना है हॉथॉर्न कॉनकॉर्ड में रहते हुए इनके संपर्क में भी आए थे।
हाँ, संपर्क में तो आए, पर उनके इस कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा आशावाद पर वो हमेशा एक सवाल उठाते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग जीवन की जो स्याह सच्चाइयां हैं उनसे जैसे आंखें चुरा रहे हैं।
अच्छा,
यहीं पर उनका वो डार्क रोमांटिसिज्म उभरता है। वो मानव स्वभाव के जटिल, अक्सर जो असुविधाजनक पहलू हैं जैसे अपराध बोध, पाखंड, छुपे हुए पाप, उनको नजरअंदाज नहीं करते थे।
यानी वो उस दौर की जो मुख्य सोच थी उससे थोड़ा हटके चल रहे थे एक तरह से।
हाँ, काफी हद तक। देखिए, उनके समकालीन और बहुत अच्छे दोस्त थे हर्मन मेलविल। मेलविल ने तो अपनी महान कृति मॉबी डिक हॉथॉर्न को ही समर्पित की थी।
अरे वाह।
हाँ, दोनों में बुराई की प्रकृति क्या है, इंसानी ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ऐसे विषयों पर गहरी वैचारिक समानता थी। दूसरी तरफ एडगर एलन पो थे, उनकी रुचि भी हॉथॉर्न की तरह मनोवैज्ञानिक रहस्यों और गौथिक माहौल में थी, पर पो का अंदाज थोड़ा ज्यादा अतिरंजित था, अलौकिक सा। हॉथॉर्न ज्यादा मानवीय, नैतिक जमीन पर टिके रहते थे।
और वॉल्ट विटमैन, वो तो बिल्कुल अलग थे शायद।
हाँ बिल्कुल, विटमैन तो अमेरिकी लोकतंत्र और आम आदमी को लेकर बेहद आशावादी थे। उनका विस्तारवादी नजरिया था, जबकि हॉथॉर्न का नजरिया अमेरिका की संभावनाओं पर कहीं ज्यादा आलोचनात्मक था, यहाँ तक कि थोड़ा शंकालु भी कह सकते हैं।
ये तो हुई विचारों की दुनिया की हलचल, लेकिन समाज भी तो बदल रहा था तेजी से। दस्तदा खत्म करने की मांग उठ रही थी, महिलाओं के अधिकारों की बात होने लगी थी, रेल की पटरियां बिछ रही थी, शहर बड़े हो रहे थे।
हाँ, ये सब हो रहा था। और हॉथॉर्न ने इन समकालीन मुद्दों पर सीधी टिप्पणी करने के बजाय क्या किया कि अपने प्यूरिटन पुरखों के इतिहास को, खासकर सेलम की घटनाओं को, एक आईने की तरह इस्तेमाल किया।
ये बहुत ही दिलचस्प तकनीक है, मतलब सीधे ना कहकर इतिहास के जरिए कहना।
हाँ, बहुत दिलचस्प। वो अतीत के जरिए वर्तमान के पखंड को दिखा रहे थे। समझिए, एक तरफ अमेरिका फैल रहा था, प्रगति का नारा था, दूसरी तरफ दास्ता जैसी अमानवीय प्रथा चल रही थी। हॉथॉर्न अपने लेखन में इसी तरह के नैतिक विरोधाभासों को, राष्ट्र की पहचान से जुड़े सवालों को और प्यूरिटन नैतिकता के खोखलेपन को कुरेदते थे।
अब जरा उनके निजी जीवन की तरफ देखें। जन्म तो सेलम में ही हुआ था, पिता समुद्री कप्तान थे, लेकिन जब नथानियल सिर्फ 4 साल के थे तो उनकी दूर सूरीनाम में पीले बुखार से मौत हो गई। इस सदमे ने उनकी माँ को जैसे बिल्कुल तोड़ दिया और वो फिर ताउम्र एकांत में ही रहीं।
हाँ, ये बहुत दुखद था। और हॉथोर्न का बचपन फिर एक खामोश, कुछ हद तक उदास और महिलाओं के साये में बीता। माँ थी और मैनिंग रिश्तेदार। आर्थिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, सामान्य ही थे।
फिर वो पैर की चोट वाली बात भी आती है।
हाँ, 9 साल की उम्र में पैर में चोट लगी और करीब 1 साल बिस्तर पर गुजारना पड़ा। लेकिन वो समय कहते उन्होंने खूब पढ़ने में लगाया। एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन, जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और ढेर सारे गौथिक उपन्यास पढ़ डाले। इनकी छाप उनके लेखन पर साफ दिखती है बाद में।
और फिर कॉलेज, बॉबरोइन कॉलेज गए थे वो।
हाँ, बॉबरोइन कॉलेज 1821-25। वहां उनकी दोस्ती दो ऐसे लोगों से हुई जो जिंदगी भर उनके साथ रहे। एक तो भविष्य के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स।
अच्छा, राष्ट्रपति पियर्स उनके दोस्त थे।
हाँ, आजीवन दोस्त और संरक्षक भी रहे। और दूसरे थे होरेशियो ब्रिज, जिन्होंने उनकी शुरुआती कहानियों को छपवाने में भी मदद की थी।
और कॉलेज के बाद का वो दौर, करीब 12 साल का एकांतवास अपनी माँ के घर सेलम में ही। वो खुद उसे डिज़मल चैम्बर यानी उदास कमरा कहते थे। आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है इतना लंबा एकांत।
हाँ बिल्कुल, पर शायद यही वो समय था जब उन्होंने अपनी कला को मांझा, अपनी आवाज को पाया, गहन अध्ययन किया, खूब लिखा, अभ्यास किया और अपनी वो खास शैली और वो गहरे विषय जो उनकी पहचान बने उन्हें इसी दौर में तलाशा। सुना तो ये भी है कि अपनी शुरुआती कई रचनाएं उन्होंने जला भी दी थी।
सच में? मतलब इतने आत्म आलोचक थे?
हाँ, ऐसा कहा जाता है। ये दिखाता है कि वो अपनी कला को लेकर कितने गंभीर थे। वो सिर्फ लिखना नहीं चाहते थे बल्कि कुछ खास, कुछ गहरा कहना चाहते थे। और यहीं से उनके लेखन की जो खासियतें हैं वो उभर कर सामने आती हैं।
जैसे उनकी रोमांस की अवधारणा। वो अपने कामों को नॉवेल नहीं कहते थे, रोमांस कहते थे। इसका क्या मतलब था? ये लव स्टोरीज की बात थी?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए रोमांस यथार्थ और कल्पना के बीच का एक, कह लीजिए, तटस्थ क्षेत्र था, न्यूट्रल टेरिटरी, एक ऐसी जगह जहां लेखक को थोड़ी आजादी मिलती है। वो सिर्फ बाहरी घटनाओं का यथार्थवादी चित्रण ना करे बल्कि किरदारों के अंदरूनी मन, उनकी मनोवैज्ञानिक गहराइयों, नैतिक संघर्षों, आत्मा की परतों को ज्यादा खुलकर दिखा सके।
अच्छा।
यहाँ प्रतीकों और रूपकों के लिए ज्यादा गुंजाइश बन जाती थी।
और प्रतीकवाद, सिंबलिज्म और रूपक, एलेगरी।
हाँ,
ये तो जैसे हॉथोर्न के हथियार ही थे। सोचिए, द स्कारलेट लेटर का वो धधकता हुआ लाल अक्षर ए, या द मिनिस्टर्स ब्लैकवेल कहानी में पादरी का वो रहस्यमयी काला पर्दा।
बिल्कुल,
ये सिर्फ चीजें नहीं रहती बल्कि इंसानी रूह के गहरे राजों और समाज के छुपे हुए सच के प्रतीक बन जाते हैं।
क्या इसी अंदरूनी दुनिया पर फोकस ने बाद के लेखकों के लिए, जैसे हेनरी जेम्स के लिए, राह बनाई? निश्चित रूप से। उन्होंने मानवीय इरादों की जो धुंधली गलियां हैं, छुपी हुई प्रेरणाएं हैं, अनकहा अपराध बोध है, उसको जिस तरह कुरेदा, उसने हेनरी जेम्स जैसे मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी लेखकों के लिए जमीन तैयार की। हॉथोर्न दिखा रहे थे कि इंसान का असली ड्रामा अक्सर उसके मन के भीतर चलता है। शायद इसीलिए उनका काम पहली नजर में उतना आसान नहीं लगता, क्योंकि वो सतह के नीचे झांकने की मांग करता है।
उनके लेखन में कुछ विषय हैं जो बार बार लौट कर आते हैं, जैसे अतीत का साया। उनका मानना था कि एक पीढ़ी का गलत काम अगली पीढ़ियों तक जिंदा रहता है, ये बात वो कहते थे।
हाँ, ये उनके काम का एक केंद्रीय सूत्र है।
और छुपा हुआ अपराध बोध, कैसे वो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। व्यक्ति का टकराव दमनकारी समाज से, और खास तौर पर प्यूरिटन समाज की जो ऊपरी धर्म परायणता थी, उसके नीचे दबा हुआ पाखंड।
बिल्कुल, इसीलिए कई आलोचकों ने अमेरिकन रेनेसा की अंतरात्मा कहते हैं। जहां एमर्सन और थोरो आशावाद की बात कर रहे थे, वहीं हॉथोर्न एक जरूरी संतुलन ला रहे थे। वो याद दिला रहे थे कि देखो, पाप, बुराई, मानवीय कमजोरियां, ये भी उतनी ही बड़ी हकीकत हैं। उन्होंने अमेरिकी साहित्य में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद को मजबूत किया, और उनकी अपराध बोध और पाप की जो पड़ताल है वो बहुत जटिल है। वो आसान नैतिक फैसले नहीं सुनाते बल्कि पाठक को किरदारों की नैतिक दुविधाओं के बीच लाकर खड़ा कर देते हैं।
तो ये थे उनके विचार। अब देखते हैं कि ये उनकी रचनाओं में कैसे उतरते हैं। उनके शुरुआती कहानी संग्रह थे ट्वाइस टोल्ड टेल्स 1837, फिर 1842 में विस्तार हुआ, और मॉजेस फ्रॉम एन ओल्ड मैंस 1846। इनमें यंग गुडमैन ब्राउन या द मिनिस्टर्स ब्लैकवेल जैसी कहानियां हैं। इनमें भी वही थीम दिखती हैं, छुपा पाप, दिखावटी नेकी, प्रतीकात्मक।
हाँ बिल्कुल, इन कहानियों से उन्हें साहित्यिक पहचान तो मिली पर आर्थिक सफलता अभी भी मतलब दूर थी। लेकिन फिर आया साल 1850 और उनका शाहकार द स्कारलेट लेटर।
हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है।
बहुत ज्यादा। 17वीं सदी के बोस्टन का वो कठोर प्योरिटन माहौल। कहानी है हेस्टर प्रिन की, जिसे नाजायज संबंध से हुए बच्चे के कारण समाज बहिष्कृत कर देता है और उसे अपने सीने पर व्यभिचार के प्रतीक के तौर पर एक लाल अक्षर ए पहनना पड़ता है हमेशा। उसके साथ है रहस्य में डूबा उसका प्रेमी, जो कि एक सम्मानित पादरी है, आर्थर डिम्सडेल, और बदला लेने की आग में जलता उसका पति रॉजर चिलिंगवर्थ। ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपराध बोध, सामाजिक पाखंड, सजा और अंत में मुक्ति की तलाश का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। वो लाल ए तो अमेरिकी साहित्य का एक अमर प्रतीक बन गया। इसी उपन्यास ने हॉथोर्न को रातों रात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला दी।
द स्कारलेट लेटर ने समाज के पाखंड और छुपे हुए अपराध बोध पर जोर दिया और इसी नस को पकड़ते हुए अगले ही साल 1851 में आया द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स। ये एक पुरानी हवेली और उसमें रहने वाले पिंचियन परिवार की कई पीढ़ियों की कहानी है। कहते उन पर पूर्वजों के पापों का साया है।
हाँ बिल्कुल, खासकर विच ट्रायल के दौरान किए गए जुल्मों का साया। यहाँ भी वही थीम है, अतीत कैसे वर्तमान को जकड़े रखता है, लेकिन इसमें अंत में मुक्ति की एक हल्की सी उम्मीद भी दिखती है, हालांकि रास्ता बहुत कठिन है। इसमें गॉथिक माहौल है और वो सात नुकीली छतों वाला घर, वो खुद एक जिंदा किरदार जैसा लगता है जो अपने भीतर न जाने कितने राज और त्रासदियां समेटे हुए हैं। फिर आया 1852 में द ब्लिचडेल रोमांस। ये उनके ब्रुक फार्म नाम के एक यूटोपियन समुदाय में रहने के अनुभव पर आधारित था।
ब्रुक फार्म, अच्छा वो जगह जहाँ कुछ बुद्धिजीवी मिलकर एक आदर्श समाज बनाने की कोशिश कर रहे थे। हॉथोर्न भी थे वहाँ।
हाँ, वो वहाँ कुछ महीने रहे थे पर उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, उनका मोह भंग हो गया। द ब्लिचडेल रोमांस इसी अनुभव से निकला है। ये सिर्फ यूटोपियन सपनों की असफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे सुधारक खुद अपने अहंकार, ईर्ष्या और छुपी हुई इच्छाओं के शिकार हो जाते हैं।
अच्छा,
हॉथोर्न की नज़र में इंसानी फितरत शायद किसी भी आदर्शवादी योजना को खराब कर सकती है, तो ये उस दौर के सुधार आंदोलनों पर भी एक तरह की संदेहवादी टिप्पणी थी।
मतलब वो सुधार के खिलाफ थे या सिर्फ खोखले आदर्शवाद के, ये सवाल उठता है।
हाँ, ये सवाल उपन्यास उठाता है, जवाब सीधे नहीं देता।
और उनका आखिरी पूरा उपन्यास द मार्बल फॉन 1860 वो रोम में सेट है। इसमें अमेरिकी कलाकारों की कहानी है जो यूरोप की पुरानी जटिल दुनिया से मिलते हैं। इसमें मासूमियत बनाम अनुभव का द्वंद्व है और एक दिलचस्प विचार है सौभाग्यशाली पतन का, मतलब क्या नैतिक और आत्मिक विकास के लिए पाप या पतन का अनुभव जरूरी है। ये हॉथोर्न का अपना नजरिया था।
ये कहना मुश्किल है, हॉथोर्न अक्सर ऐसे सवाल उछालते थे, पाठक को सोचने पर मजबूर करते थे, पर खुद कोई सीधा जवाब देने से बचते थे। द मार्बल फॉन में उनके यूरोप प्रवास के अनुभव और कला पर उनके विचार भी झलकते हैं।
तो अगर हम समकालीनों से उनकी तुलना करें, ट्रांसेंडेंटलिस्ट से उनका रिश्ता हमने देखा, वो उस मंडली का हिस्सा तो थे पर थोड़े बाहरी शंकालु दर्शक जैसे।
हाँ।
और हमन मेलविल के साथ दोस्ती तो बहुत ही खास थी, वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक दूसरे की प्रतिभा के गहरे प्रशंसक थे। मेलविल ने हॉथोर्न की कहानियों में जो कारी सच्चाई छुपी थी उसे पहचाना और उसे अपनी प्रेरणा माना। मॉबी डिक का समर्पण इसी गहरे सम्मान का प्रतीक है। दोनों बुराई की पहेली, ज्ञान की सीमाओं जैसे सवालों पर सोचते थे। ये दोस्ती अमेरिकी साहित्य के लिए बहुत अहम है।
वो के साथ तुलना भी होती है, दोनों डार्क रोमांटिक, दोनों मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरते हैं, पर फर्क क्या था?
फर्क ये था कि हॉथोर्न ज्यादा नैतिक और ऐतिहासिक जमीन पर टिके रहते हैं, उनके पात्र समाज और इतिहास के दबाव में मनोवैज्ञानिक द्वंद्व झेलते हैं, जबकि पो के पात्र अक्सर अपनी ही आंतरिक दुनिया के तूफानों में, चरम मानसिक अवस्थाओं में और कभी कभी अलौकिक में चले जाते हैं।
अच्छा,
और वॉल्ट विटमैन से तो वो एकदम अलग थे।
हाँ बिल्कुल, विपरीत छोर पर। विटमैन का खुलापन, विस्तार, अमेरिकी लोकतंत्र और आम आदमी में उनका अटूट विश्वास, इसकी तुलना में हॉथोर्न ज्यादा संयमित, आलोचनात्मक, यहाँ तक कि अमेरिकी प्रयोग की सफलता को लेकर कुछ हद तक निराशावादी भी लगते हैं।
अब बात करते हैं हॉथोर्न की विरासत की। उनके जीते जी उन्हें सम्मान तो मिला, खासकर द स्कारलेट लेटर के बाद, पर क्या उनकी किताबें बहुत बिकी उस दौर की जो दूसरी भावुक कहानियां थी उनके मुकाबले?
शायद उतनी नहीं, वो हैप्पी एंडिंग वाले लेखक नहीं थे, ना ही वो साफ साफ नैतिक संदेश देते थे। इससे कुछ पाठक और आलोचक उस समय असहज भी होते थे। उनके उदास माहौल नैतिक अस्पष्टता से थोड़ा जूझते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। हेनरी जेम्स ने उन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पितामह माना। दक्षिणी गॉथिक लेखक जैसे विलियम फॉकनर, जिनके किरदार भी अतीत के बोझ और पुरखों के पापों से दबे होते हैं, या फ्लैनरी ओकोनर, जिनकी कहानियों में भी पाप और कृपा की जटिल लड़ाई दिखती है, उन पर हॉथोर्न का गहरा प्रभाव है।
अच्छा,
आज वो अमेरिकी साहित्य के शीर्ष स्तंभों में गिने जाते हैं। 1930 में उन्हें हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन्स में भी शामिल किया गया था।
और आज के दौर में 21वीं सदी में क्या हॉथोर्न पुराने पड़ गए हैं या उनकी बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं?
मुझे तो लगता है शायद पहले से भी ज्यादा। सोचिए ना उनके विषयों के बारे में, सार्वजनिक शर्मिंदगी, पब्लिक शेमिंग, ये आज सोशल मीडिया के जमाने का कितना बड़ा सच है।
हाँ बिल्कुल।
इतिहास को कैसे याद किया जाए या बदला जाए, हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, व्यक्ति की आजादी और समाज के दबाव के बीच का तनाव, पाखंड, हमारे छुपे हुए कामों के अनचाहे नतीजे, ये सब आज भी हमारे समाज की दुखती रग हैं। हॉथोर्न अमेरिका की और शायद इंसानी अंतरात्मा के ऐसे इतिहासकार हैं जिन्हें पढ़ना आज भी बेहद जरूरी है।
उनके गद्दे में भी एक खास तरह की गहराई है, यादगारपन है। चलिए उनके कुछ कथनों पर गौर करें जो उनके विचारों की ताकत दिखाते हैं।
हाँ, जैसे द स्कारलेट लेटर में पादरी डिम्सडेल के आंतरिक संघर्ष को दिखाता एक बहुत सटीक वाक्य है पाखंड पर। कोई भी मनुष्य लंबे समय तक अपने लिए एक चेहरा और दुनिया के लिए दूसरा चेहरा नहीं रख सकता, बिना इस उलझन में पड़े कि असली कौन सा है।
क्या बात है, मतलब दोहरा पर खुद को ही धोखा देने जैसा है।
बिल्कुल। और उसी उपन्यास के अंत में एक सीधी सच्ची पुकार है, सच्चे बनो, सच्चे बनो, सच्चे बनो, दुनिया को खुलकर दिखाओ। यदि अपना सबसे बुरा नहीं तो कम से कम कोई ऐसा गुण जिससे सबसे बुरे का अनुमान लगाया जा सके।
कितनी बड़ी बात है, मतलब बाहरी चमक दमक से बेहतर है अपनी असलियत को, अपनी कमियों को भी स्वीकार करना।
हाँ, और उनकी निजी नोटबुक से खुशी पर एक बहुत सुंदर चिंतनशील विचार मिलता है। खुशी एक तितली की तरह है, जिसे जब पकड़ने जाओ तो वो हमेशा तुम्हारी पकड़ से जरा दूर रहती है, लेकिन अगर तुम चुपचाप बैठ जाओ तो शायद तुम पर आ बैठे।
वाह, ये उनके अपने शांत मननशील स्वभाव को दर्शाता है, और शायद ये भी कि खुशी हासिल करने की चीज नहीं, महसूस करने की है।
बिल्कुल। और अतीत की तभी न मिटने वाले असर पर उनका वो प्रसिद्ध वाक्य द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स की प्रस्तावना से, एक पीढ़ी का गलत काम अगली पीढ़ियों तक जीवित रहता है, ये उनके पूरे लेखन का जैसे सार सूत्र है।
हाँ, ये तो बहुत बार सुना है।
फिर यंग गुडमैन ब्राउन कहानी का वो चरम बिंदु जब नायक का विश्वास टूटता है, वो अमेरिकी साहित्य में मासूमियत खोने का एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। मेरा विश्वास चला गया, वह एक स्तब्ध क्षण के बाद चिल्लाया, पृथ्वी पर कोई अच्छाई नहीं है और पाप तो बस एक नाम है, आओ शैतान, क्योंकि यह दुनिया तुम्हें दी गई है।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़कर तो,
है ना। और शब्दों की ताकत पर, खासकर लेखक की जिम्मेदारी पर, द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स ये विचार, शब्द कितने निर्दोष और शक्तिहीन होते हैं जब वे शब्दकोश में खड़े होते हैं, पर कितने शक्तिशाली बन जाते हैं अच्छे और बुरे के लिए जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में आते हैं जो उन्हें जोड़ना जानता है।
क्या खूब कहा है, शब्दों का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं हॉथोर्न की जीवन से जुड़ी, जैसे वो नाम में W जोड़ना, अपने परदादा जज से दूरी बनाने के लिए, ये हमने शुरू में बात की थी,
और वो 12 साल का डिज़मल चैम्बर वाला एकांतवास, कमाल का समर्पण था अपनी कला के प्रति।
ये जानना भी रोचक है कि उन्होंने अपना पहला उपन्यास फैनशॉ 1828, जिसे उन्होंने खुद ही प्रकाशित करवाया था, बाद में उसे लगभग अस्वीकार कर दिया, उसे अपनी रचनाओं में गिनना ही नहीं चाहते थे। कितने आत्मा आलोचक थे। गुजारे के लिए कस्टम हाउस में नौकरी करनी पड़ी, बॉस्टन में, फिर सेलम में, और विडंबना देखिए, जब सेलम कस्टम हाउस से राजनीतिक कारणों से उन्हें निकाला गया तो उसी फ्रस्ट्रेशन और खाली समय में उन्होंने द स्कारलेट लेटर जैसा शाहकार रच डाला।
हाँ, कभी कभी बुरा वक्त भी कुछ अच्छा ले आता है।
बिल्कुल।
ब्रूक फार्म का अनुभव भी उनके लिए आंखें खोलने वाला रहा, जिसने उन्हें आदर्शवादी योजनाओं की हकीकत दिखाई और द ब्लिट्सडेल रोमांस की प्रेरणा दी।
लेकिन निजी जीवन में कलाकार सोफिया पीबॉडी से उनकी शादी बेहद कामयाब और खुशहाल रही। कहते हैं सोफिया ने उनके एकाकीपन को कम किया और उन्हें बहुत सहारा दिया।
हाँ, ये सच है। और फिर वो लिवरपूल में अमेरिकी वाणिज्य दूत का पद, ये उनके कॉलेज के दोस्त राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स की तरफ से एक बड़ा सम्मान था। इससे न सिर्फ उन्हें आर्थिक स्थिरता मिली बल्कि ये उनके बढ़ते साहित्यिक और सांस्कृतिक कद का भी प्रतीक था।
उनका अंत भी कुछ वैसा ही शांत और कह सकते हैं रहस्यमयी था जैसा उनका स्वभाव। अपने दोस्त फ्रैंकलिन पियर्स के साथ ही यात्रा पर थे जब नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई 1864 में। कुछ काम अधूरे छोड़ गए।
हाँ, और उनकी रचनाओं के फिल्म रूपांतरणों की बात करें तो द स्कारलेट लेटर सबसे ज्यादा बार फिल्माया गया है। 1926 की मूक फिल्म जिसमें लिलियन गिश थी उसे क्लासिक मानते हैं, जबकि 1995 की डेमी मूर वाली फिल्म को आलोचना झेलनी पड़ी थी कि उसने उपन्यास की जटिलताओं को बहुत सरल बना दिया।
अच्छा,
द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स की 1940 वाली फिल्म विंसेंट प्राइस के साथ वो गॉथिक माहौल बनाने में काफी सफल रही थी। पर सच ये है कि हॉथॉर्न के लेखन का जोर आंतरिक मनोविज्ञान और प्रतीकवाद पर है। उसे पर्दे पर उतारना हमेशा एक चुनौती रहा है।
ये बात तो है। तो कुल मिलाकर नथैनियल हॉथॉर्न हमें सतह के नीचे देखने, इतिहास की परछाइयों और इंसानी दिल के अक्सर अनदेखे अंधेरे कोनों में झांकने को उकसाते हैं। वो आसान आरामदेह जवाब नहीं देते बल्कि बेचैन करने वाले सवाल छोड़ जाते हैं हमारे लिए।
बिल्कुल, और शायद आज के लिए एक सवाल ये भी छोड़ जाते हैं। इस दौर में जहां हम सब अपनी एक सार्वजनिक छवि गढ़ने और चमकाने में लगे हैं, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई एक मुखौटा पहने हैं, क्या हॉथॉर्न की वो चेतावनी कि दो चेहरे लेकर जीने वाला इंसान खुद उलझ जाता है कि असली कौन सा है, पहले से कहीं ज्यादा सच्ची और जरूरी नहीं हो गई है? क्या हम सब कहीं ना कहीं अपना असली चेहरा छुपाए नहीं जी रहे हैं? सोचने वाली बात है।
जरूर सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।